तो आज हमारे सामने है भाषा का एक बड़ा ही मजेदार हिस्सा, टेंसेस। जरा सोचिए, ये शब्दों की दुनिया में टाइम मशीन की तरह है। हमें किसी भी काम के होने का सही वक्त बताते हैं कि वो अभी हुआ, पहले हो चुका या फिर आगे होगा। हमारी ये बातचीत सीधे आपके दिए स्रोत अध्याय 6, जिसका शीर्षक है टाइम ट्रैवलर्स द टेंस टीम, पर आधारित है। आज हम इसी अध्याय की गहराइयों में उतरेंगे, इसके जरूरी निकात को समझेंगे, ताकि टेंसेस का पूरा कॉन्सेप्ट आईने की तरह साफ हो जाए। इस अध्याय के हिसाब से हम जानेंगे कि टेंस असल में है क्या, वो तीन मुख्य टाइम जोन्स कौन से हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और फिर हर जोन के वो चार अलग अलग अंदाज या रूप। इसके साथ ही सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का क्या चक्कर है और कहानियों में या कुछ लिखते वक्त इनका सही तालमेल कैसे बिठाना है, इस पर भी गौर करेंगे। संक्षेप में कहें तो जैसा स्रोत बताता है, टेंस क्रिया यानी वर्ब का वो रूप है जो हमें टाइम का सिग्नल देता है।
बिल्कुल सही, और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि टेंस ही भाषा की वो बुनियाद है, एक तरह से रीढ़ की हड्डी है जो हमारी बातों में स्पष्टता लाती है। इसके बिना हम समय के अलग अलग पलों को सही ढंग से बयान ही नहीं कर पाएंगे। ये हमें हमारे विचारों को एक सटीक टाइम फ्रेम देने में मदद करते हैं।
तो चलिए इस टाइम मशीन को चलाना सीखते हैं। स्रोत के मुताबिक टेंस की परिभाषा क्या है? जैसा कि कहा गया है, ये वर्ब यानी क्रिया का वो बदला हुआ रूप है जो बताता है कि एक्शन कब हो रहा है, अभी, नाउ, पहले, बिफोर या बाद में, लेटर।
हाँ, और ये जानना सिर्फ परिभाषा के लिए नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से महत्वपूर्ण है। यही वो चाबी है जिससे वाक्यों में समय का ताला खुलता है। यह हमें एक्शन के होने के वक्त का एहसास कराता है, जिससे हमारी कही बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हम किस पल की बात कर रहे हैं।
अच्छा, तो अध्याय हमें तीन मुख्य टाइम जोन्स में ले जाता है, प्रेजेंट यानी वर्तमान, पास्ट यानी भूतकाल और फ्यूचर यानी भविष्यकाल। और मजेदार बात यह है कि हर जोन के अपने चार फ्लेवर या रूप हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए एक एक करके इन टाइम जोन्स की सैर करते हैं और इनके रूपों को समझते हैं। शुरुआत करते हैं प्रेजेंट टेंस से, यानी वो सब जो अभी या आजकल होता है। स्रोत की तालिका पर नजर डालें तो पहला है सिंपल प्रेजेंट। बताया गया है कि ये रोज की आदतों या अटल सच्चाइयों यानी फैक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे शी रीड्स एवरी डे।
हाँ, पर यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि सिंपल प्रेजेंट सिर्फ रोज की आदतों या सामान्य तथ्यों तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि स्रोत इशारा करता है, इसका दायला और बड़ा है। ये उन सार्वभौमिक सत्यों यानी यूनिवर्सल ट्रूथ्स या वैज्ञानिक नियमों को बताने के लिए भी इस्तेमाल होता है जो हमेशा सच होते हैं। उदाहरण के लिए, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये एक ऐसी सच्चाई है जो किसी खास समय से बंधी नहीं है।
ये चीजें नहीं बल्कि हमेशा सच रहने वाली बातें भी बताता है। अच्छा, अगला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। श्रोत कहता है ये उस काम के लिए है जो ठीक अभी इसी पल चल रहा है। उदाहरण है, शी इज रीडिंग अ बुक, मतलब बोलते समय पढ़ने का काम जारी है।
बिल्कुल, ये रूप एक्शन की निरंतरता, उसके जारी रहने पर फोकस करता है, खासकर बातचीत के मौजूदा पल में। ये अस्थायी स्थितियों या ऐसे कामों के लिए भी इस्तेमाल होता है जो आज कल चल रहे हैं, भले ही ठीक बोलते वक्त ना हो रहे हो। जैसे, he is learning French these days.
ठीक है। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट। श्रोत समझाता है कि ये उस काम के लिए है जो या तो अभी अभी खत्म हुआ है या फिर जिसका असर अभी भी महसूस हो रहा है या फिर किसी अनुभव को बताने के लिए। उदाहरण दिया है, शी हैज रेड दैट बुक। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि उसने किताब पढ़ी, बल्कि ये भी कि पढ़ने का काम पूरा हो चुका है और शायद उसका ज्ञान या असर अभी भी उसके पास है।
हाँ बिल्कुल, प्रेजेंट परफेक्ट की खूबी यही है कि ये अतीत में हुए किसी काम को वर्तमान से जोड़ता है। एक्शन भले ही पास में हुआ हो, लेकिन उसकी प्रासंगिकता या नतीजा अभी भी मौजूद है। ये असल में अतीत और वर्तमान के बीच एक पुल की तरह काम करता है। ये भी बताता है कि काम कब हुआ, ये जरूरी नहीं, बस हो चुका है।
अच्छा, समझा। और प्रेजेंट टेंस का चौथा और आखिरी रूप है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। स्रोत के अनुसार ये उस एक्शन के लिए है जो अतीत में शुरू हुआ था और अब भी बोलते समय भी जारी है, जैसे शी हैज बीन रीडिंग फॉर एन आवर। यहां फोकस सिर्फ काम के जारी रहने पर नहीं बल्कि उसकी अवधि पर भी है, कि वो कितनी देर से चल रहा है।
एकदम सही पकड़ा। ये रूप न केवल एक्शन के जारी रहने की बात करता है, बल्कि इस बात पर भी जोर देता है कि वो कितनी अवधि से चल रहा है। तो संक्षेप में, प्रेजेंट टेंस के ये चारों रूप, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, हमें वर्तमान के अलग अलग शेड्स दिखाते हैं। सामान्य सत्य या आदत, अभी चल रहा काम, हाल ही में पूरा हुआ काम जिसका असर बाकी है, और वो काम जो पहले से शुरू होकर अब तक चल रहा है।
ये तो हुई वर्तमान की बात। अब हमारी टाइम मशीन हमें पीछे ले जा रही है पास्ट टेंस में, यानी वो सब जो पहले हो चुका है। स्रोत की तालिका देखें तो पहला है सिंपल पास्ट। ये उन कामों के लिए है जो भूतकाल में किसी निश्चित समय पर हुए और खत्म हो गए। साफ और सीधा उदाहरण, ही वॉक्ड टू स्कूल, बात खत्म, वो स्कूल गया था।
सिंपल पास्ट दरअसल भूतकाल की कहानियां सुनाने का सबसे आम और सीधा तरीका है। ये पूरी हो चुकी घटनाओं का एक सपाट बयान देता है बिना किसी लाग लपेट के, इसलिए ज्यादातर कहानियां इसी में सुनाई जाती हैं।
ठीक है, अगला है पास्ट कंटिन्यूअस। स्रोत बताता है कि ये उस काम के लिए है जो भूतकाल में किसी खास पल में चल रहा था, जारी था। जैसे ही वॉज वॉकिंग टू स्कूल, इससे लगता है कि शायद जब कुछ और हुआ तब वो स्कूल जाने के रास्ते में था।
बिल्कुल, पास्ट कंटिन्यूअस अक्सर किसी कहानी में सीन सेट करने या पृष्ठभूमि बताने के काम आता है। ये दिखाता है कि जब कोई मुख्य घटना, जो अक्सर सिंपल पास्ट में होती है, घटी, उस वक्त क्या चल रहा था। जैसे ही वॉज वॉकिंग टू स्कूल वेन ही सॉ हिज फ्रेंड, देखने की घटना के वक्त चलने का काम जारी था।
यहाँ चीजें और दिलचस्प हो जाती है, जैसा श्रोत इशारा करता है। तीसरा रूप है पास्ट परफेक्ट। ये थोड़ा ट्रिकी लगता है। श्रोत कहता है कि ये उस काम के लिए है जो भूतकाल की किसी दूसरी घटना के होने से भी पहले हो चुका था। उदाहरण है, ही हैड वॉक्ड बिफोर इट रेन्ड।
हाँ, ये वाला थोड़ा ध्यान से समझने वाला है। अगर हम इसे कहानी कहने के नजरिए से देखें तो पास्ट परफेक्ट असल में एक बहुत शक्तिशाली टूल है। ये हमें भूतकाल में भी टाइम ट्रैवल करने की सुविधा देता है। ये दो घटनाओं के क्रम को बिल्कुल साफ कर देता है। आपके उदाहरण में हैड वॉक्ड, ये स्पष्ट करता है कि चलने का काम बारिश शुरू होने से पहले ही पूरा हो गया था। ये पाठक को टाइमलाइन में कंफ्यूज होने से बचाता है। ये दिखाता है कि कौन सी घटना पहले हुई।
अच्छा, तो ये क्रम बताने के लिए बहुत जरूरी है। और पास्ट टेंस का चौथा मुसाफिर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
बिल्कुल,
ये उस काम के बारे में बताता है जो भूतकाल में किसी घटना के होने तक कुछ समय से चल रहा था। उदाहरण, ही हैड बीन वॉकिंग फॉर एन आवर व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। यहाँ अवधि पर जोर है।
सही है, ये रूप भूतकाल में किसी एक्शन की अवधि पर फोकस करता है जो किसी दूसरे पास्ट एक्शन के शुरू होने तक जारी था। ये दिखाता है कि बारिश शुरू होने से पहले वो एक घंटे से चल रहा था। ये कितनी देर से वाले सवाल का जवाब देता है, लेकिन भूतकाल के संदर्भ में।
बहुत खूब, हमने वर्तमान और भूतकाल की यात्रा कर ली। अब अध्याय हमें भविष्य की ओर ले जाता है, फ्यूचर टेंस, यानी वो जो अभी होना बाकी है। पहला पड़ाव है सिंपल फ्यूचर, ये भविष्य में होने वाले किसी काम की सीधी साधी घोषणा है। उदाहरण, दे विल प्ले क्रिकेट।
सिंपल फ्यूचर भविष्य की योजनाओं, इरादों, भविष्यवाणियों या वादों को व्यक्त करने का सबसे आम तरीका है। विल या शैल का प्रयोग इसमें मुख्य होता है।
फिर आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये उस काम के बारे में बताता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय पर चल रहा होगा, जारी होगा। उदाहरण, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो इवनिंग। हम कल्पना कर सकते हैं कि कल शाम वो खेलने में व्यस्त होंगे।
हाँ, ये हमें भविष्य के किसी पल में झांकने और ये अंदाजा लगाने में मदद करता है कि उस वक्त क्या गतिविधि चल रही होगी। ये भविष्य के एक चलते हुए सीन की तस्वीर बनाता है।
तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट। स्रोत के अनुसार ये उस काम के लिए है जो भविष्य में किसी तय समय तक पूरा हो चुका होगा। जैसे दे विल हैव प्लेड बिफोर लंच, यानी लंच का समय आने से पहले ही उनका खेलने का काम खत्म हो चुका होगा।
फ्यूचर परफेक्ट भविष्य में एक डेडलाइन या समय सीमा तय करता है जिसके पूरा होने से पहले कोई काम मुकम्मल हो जाएगा। ये अक्सर बाय या बिफोर जैसे शब्दों के साथ आता है जो उस डेडलाइन को मार्क करते हैं।
और आखिर में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये उस काम के लिए है जो भविष्य में किसी निश्चित बिंदु तक कुछ समय से चलता आ रहा होगा। उदाहरण, बाय 6 PM दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, यानी शाम 6 बजे तक उन्हें खेलते हुए 2 घंटे बीत चुके होंगे।
ये रूप भविष्य में किसी एक्शन की अवधि पर जोर देता है जो किसी खास समय बिंदु तक जारी रहेगी। ये दिखाता है कि भविष्य के उस पल तक वो काम कितनी देर से चल रहा होगा।
तो ये थे तीनों मुख्य टेंसेस और उनके चार चार रूप, जैसा अध्याय 6 में विस्तार से बताया गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अध्याय 1 और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर रोशनी डालता है, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। स्रोत बताता है कि जब एक वाक्य में एक से ज्यादा हिस्से मतलब क्लॉजेज होते हैं, तो जो मुख्य हिस्सा मेन क्लॉज होता है, उसका टेंस अक्सर दूसरे निर्भर हिस्से डिपेंडेंट क्लॉज के टेंस को प्रभावित करता है। जैसे कोई बॉस अपने जूनियर को
हाँ कह सकते हैं।
इसे उदाहरणों से समझना आसान होगा। स्रोत में दिया है, शी सेड पास्ट दैट शी वॉज टायर्ड पास्ट। यहां मुख्य क्रिया सेड पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्ट की गई बात शी वॉज टायर्ड भी पास्ट टेंस में चली गई। दूसरा उदाहरण, ही सेज प्रेजेंट दैट ही इज हैप्पी प्रेजेंट। यहां मुख्य क्रिया सेज प्रेजेंट टेंस में है, तो रिपोर्ट की गई बात भी प्रेजेंट टेंस इज हैप्पी में ही रही।
बिल्कुल, ये लॉजिकल भी है।
अध्याय 1 आसान सा नियम भी बताता है, रूल ऑफ थंब, प्रेजेंट टेंस के साथ अक्सर प्रेजेंट टेंस ही आता है, पास्ट टेंस के साथ आमतौर पर पास्ट टेंस,
और फ्यूचर टेंस के साथ फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हो सकता है।
हाँ, ये नियम इसलिए बेहद जरूरी है ताकि वाक्यों में समय का तालमेल बना रहे और पढ़ने या सुनने वाले को कोई भ्रम ना हो। खासकर जब हम किसी की कही बात को अपने शब्दों में बता रहे होते, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में, तब ये नियम सुनिश्चित करता है कि घटनाओं का क्रम या रिपोर्टिंग का समय तार्किक रूप से सही दर्शाया जाए।
ये हमारी भाषा में एक तरह का अनुशासन लाता है।
बिल्कुल, और यहीं से जुड़ता है अध्याय का अगला अहम पहलू, नैरेटिव राइटिंग, यानी कहानी या वृत्तांत लेखन में टेंस का इस्तेमाल। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि जब हम कहानियां लिखते हैं या डायरी एंट्री करते हैं, तो टेंस का लगातार और सही इस्तेमाल, जिसे टेंस कंसिस्टेंसी कहते हैं, बेहद जरूरी है।
हाँ, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है।
जैसा कि स्रोत में बताया गया है, ज्यादातर कहानियां पास्ट टेंस में लिखी जाती हैं। उदाहरण भी दिया है, द सन वॉज शाइनिंग, द चिल्ड्रन रैन टू द पार्क, दे वर लाफिंग एंड प्लेइंग।
यहाँ देखे पूरे वर्णन में पास्ट टेंस वॉज शाइनिंग, रैन, वर लाफिंग, वॉपलिंग का एक जैसा प्रभाव बना हुआ है। ये पाठक को कहानी के समय में स्थापित कर देता है।
हाँ, पास्ट टेंस कहानी सुनाने के लिए एक तरह का मानक बन गया है, क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से पाठक को बताता है कि ये घटनाएं पहले हो चुकी हैं। टेंस कंसिस्टेंसी यानी एक ही टेंस का लगातार प्रयोग पाठक के लिए कहानी को फॉलो करना आसान बनाता है, उसे समय के झटकों से बचाता है और एक सहज अनुभव देता है। लेकिन स्रोत ये भी बताता है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। कभी कभी खास मकसद से, जैसे कि व्यक्तिगत निबंधों में या फिर किसी मैच की लाइव कमेंट्री में,
हाँ बिल्कुल,
प्रेजेंट टेंस का भी इस्तेमाल होता है। उदाहरण देखें, आई एम स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, द लाइट्स आर ब्लिंकिंग एंड द ऑडियंस इज चीयरिंग। यहाँ प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल उस पल को जीवंत बना देता है, जैसे सब कुछ अभी आंखों के सामने घट रहा हो।
और यहीं पर टेंस का असली जादू नजर आता है। लेखक जानबूझकर टेंस का चुनाव करते हैं ताकि पाठक पर एक खास प्रभाव डाल सकें। पास्ट टेंस कहानी को एक बीती हुई घटना का एहसास देता है, शायद थोड़ा दूरी और चिंतन का भाव लाता है। वहीं प्रेजेंट टेंस इमीडिएटसी यानी तात्कालिकता और पाठक को सीधे उस पल से जोड़ने का काम करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा स्रोत रेखांकित करता है, वो है स्थिरता। एक बार जो टेंस चुना, आमतौर पर उसी में रहना चाहिए, जब तक कि जानबूझकर समय में बदलाव दिखाने का कोई खास कारण ना हो। टेंस का यही सुसंगत उपयोग पाठक को कहानी के समय में एक आरामदायक यात्रा कराता है, ठीक वैसे ही जैसे अध्याय का शीर्षक कहता है, टाइम ट्रैवलर्स।
वाह, तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने आज अध्याय 6 के जरिए टेंसेस की दुनिया की एक अच्छी खासी सैर की। हमने समझा कि टेंस क्या है, क्रिया का समय बताने वाला रूप। हमने तीन मुख्य टाइम जोन्स, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और हर एक के चार रूपों को उदाहरणों के साथ खंगाला। हमने सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के तालमेल के नियम को देखा और कहानी कहने में टेंस कंसिस्टेंसी यानी स्थिरता के महत्व को भी समझा। निचोड़ ये है कि टेंस भाषा की वो चाबी है जिससे समय का दरवाजा खुलता है।
बिल्कुल, ये टेंसेस महज व्याकरण के नियम नहीं है, ये वो औजार हैं जो हमें अपने विचारों, अनुभवों और कहानियों को समय के कैनवस पर सटीकता और प्रभाव के साथ चित्रित करने की ताकत देते हैं। इन्हें समझना बेहतर कम्युनिकेशन के लिए अनिवार्य है। और जाते जाते एक छोटा सा विचार, या शायद एक अभ्यास छोड़ना चाहूंगा।
जरूर।
अगली बार जब कोई कुछ पढ़े, चाहे वो कहानी हो, अखबार का लेख हो, या फिर किसी की ईमेल, या किसी को सुने, तो एक पल रुककर ध्यान दें यहां किस टेंस का उपयोग किया गया है, और फिर सोचें, ये एक अहम सवाल उठाता है, लेखक या वक्ता ने यही टेंस क्यों चुना? क्या सिंपल पास्ट की जगह पास्ट कंटिन्यूअस लिखने से सीन बदल जाता? क्या प्रेजेंट टेंस उस हिस्से को ज्यादा तात्कालिक या पर्सनल बनाता है? इस तरह से टेंसेस पर गौर करने से उनकी बारीकियों और उनकी शक्ति को लेकर आपकी समझ और भी गहरी होगी। ये व्याकरण को जीवंत बना देगा।
वाह, ये तो वाकई सोचने वाली बात है और टेंसेस को समझने का एक प्रैक्टिकल तरीका भी। उम्मीद है भाषा के इन टाइम ट्रैवलिंग टूल्स को समझने में अध्याय 6 पर आधारित हमारी ये बातचीत मददगार साबित हुई होगी।